डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 16 मैथ्यू 23 से 24 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 16 है, मैथ्यू 23-24। यीशु सार्वजनिक रूप से फरीसियों और सदूकियों के साथ बहस करते रहे हैं। खैर, अब यीशु अपने शिष्यों और सुनने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को और अधिक विशेष रूप से बताने जा रहे हैं कि ये फरीसी और अन्य नेता वास्तव में क्या हैं। मैथ्यू अध्याय 23 में वह शास्त्रियों और फरीसियों को उत्तेजित करने जा रहा है। वह धार्मिक प्रतिष्ठान पर आसन्न फैसले के बारे में बात करने जा रहे हैं, अंतः मंदिर और इसलिए मंदिर प्रतिष्ठान के बारे में बात करेंगे। प्रथम आने वाले फरीसी, शास्त्री और मंदिर सभी वर्ष 70 में न्याय के अधीन होंगे जब यरूशलेम नष्ट हो जाएगा और मंदिर नष्ट हो जाएगा। लेकिन यीशु इससे आगे बढ़कर दूसरे आगमन के बारे में बात करने वाले हैं और उन चेतावनियों का मतलब यह भी है कि हम उन पहली चेतावनियों को लें और उन्हें अपने समय की धार्मिक स्थापना पर लागू करें और खुद पर ध्यान दें। भेड़ों की परवाह न करने वाले कथित मंत्रियों अध्याय 24 श्लोक 45 से 51 तक का भी न्याय किया जाएगा। तो फरीसियों, यह केवल ऐतिहासिक रुचि के कारण हमें बताने की बात नहीं है। ठीक है, फरीसियों ने गड़बड़ कर दी। यह खुद को चुनौती देने के लिए भी कुछ है, हमें खुद को देखने और कहने के लिए मजबूर करना कि उन्होंने जैसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार न करें। सुनिश्चित करें कि हम भगवान के लोगों से प्यार करते हैं और भगवान के लोगों की उन तरीकों से सेवा करते हैं जो हमें करनी चाहिए। यीशु ने दिखावे के लिए धर्म को चुनौती दी। यह जेरूसलम नेता की शत्रुता के संदर्भ में है। इनमें से अधिकांश मार्क अध्याय 12 से आए हैं और इनमें से कुछ मार्क अध्याय 12 में भी हैं। बाद में रब्बियों ने और इसमें से कुछ ल्यूक अध्याय 11 से भी बाद में रब्बियों ने पाखंड की निंदा की। उन्होंने देखा कि इसराइल में पाखंड था और उन्होंने फरीसियों के पाखंड की निंदा की। वास्तव में रब्बियों की यह परंपरा थी, आप इसे कई बार उनके लेखों में पाते हैं जो हमारे लिए संरक्षित हैं। उनके पास 7 अलग अलग प्रकार के फरीसियों के बारे में यह परंपरा थी। फरीसी का एकमात्र अच्छा प्रकार वह फरीसी था जो ईश्वर के प्रेम या ईश्वर के भय से ईश्वर की सेवा करता था। लेकिन अन्य प्रकार के फरीसियों ने अन्य प्रकार के उद्देश्यों से परमेश्वर की सेवा की और इसलिए उन्होंने इस एक प्रकार के फरीसी के बारे में बात की जिसे रक्तस्राव या घायल फरीसी कहा जाता है। यह फरीसी अपनी आंखें बंद करके घूमता रहता था और चीजों में भागता रहता था और इसलिए खुद को चोट पहुंचाता था, कहीं ऐसा न हो कि वह गलती से किसी महिला पर नजर डाल ले और उसके प्रति वासना पैदा कर दे। तो यहूदी परंपरा के भीतर फरीसियों के पाखंड और अन्य लोगों के पाखंड को स्वीकार किया गया। मुझे एक बार याद है जब मैं यह जानकर भयभीत हो गया था कि एक विशेष मंत्री व्यभिचार कर रहा था और उसकी मंडली के एक सदस्य ने कहा, तुम कहाँ थे? आप वास्तविक दुनिया के संपर्क से बाहर हैं। भगवान न करे अगर वास्तविक दुनिया में यह सामान्य है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो पाप में जी रहे हैं और भगवान के नाम का उपयोग कर रहे हैं, और यह यीशु के समय में भी सच था। और यीशु पाखंड की निंदा करते हैं। अंतर यहूदी विवाद थे। आप उन्हें मृत सागर स्क्रॉल में पाते हैं, आप उन्हें चौथे एजरा, दूसरे बारूक इत्यादि में पाते हैं। और ऐसा न हो कि हम सोचें कि यीशु बहुत बुरा है, कुछ लोगों ने कहा है, ठीक है, मैथ्यू 23 यहूदी विरोधी है। यह यहूदी विरोधी नहीं है। यदि आप कुछ यहूदी विरोधी पढ़ना चाहते हैं तो जोसेफस एपियन के विरुद्ध अपने काम में एपियन से यहूदी विरोधी बदनामी की रिपोर्ट करता है और एपियन मूसा के बारे में सभी प्रकार की बुरी बातें कहता है, कहता है कि पलायन का कारण यह था कि यहूदियों को कुष्ठ रोग था और मिस्र बस उनसे छुटकारा पाना चाहता था। वह यहूदियों को मूर्ति पूजक कहता है और मंदिर में गधे के सिर की पूजा करने की बात करता है। ये सभी यहूदी विरोधी निंदक थे, लेकिन इसके विपरीत आपके बीच अंतर यहूदी विवाद थे, जहां आपके कुछ यहूदी समूह थे जो कुछ अन्य यहूदी समूहों की निंदा कर रहे थे। मेरा मतलब है, आप भविष्यवक्ताओं को देखें, आप आमोस को देखें, आप होशे को देखें। मैं होशे को ईश्वर के हृदय से, ईश्वर के प्रेम से प्यार करता हूँ, लेकिन होशे, आमोस, यिर्मयाह और परमेश्वर ने इन पुस्तकों में अपने लोगों से बहुत कठोरता से, बहुत दृढ़ता से बात की। और आपके पास कुछ यहूदी समूहों के बीच अन्य यहूदी समूहों की निंदा करने वाली इसी तरह की बयानबाजी थी। मृत सागर स्क्रॉल मूल रूप से कहते हैं कि हम ईश्वर के अनुबंधित समुदाय हैं। हम ही एकमात्र अवशेष हैं जो अभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसराइल का शेष भाग धर्मत्यागी है, और वे वास्तव में एक स्थान पर, मेरा मानना है कि यह कुमरान भजनों में हैं, वे शेष इसराइल को बेलियल की मंडली, शैतान की सभा कहते हैं। अब वह सशक्त भाषा है, और वह यहूदी था। खैर, यीशु यहूदी थे, यीशु यहूदी हैं, हम कह सकते हैं यीशु यहूदी हैं, और उनके शिष्य यहूदी थे, और वह भविष्यवक्ताओं से कम नहीं बल्कि न्याय सुना रहे थे। हालांकि मैथ्यू पहले आने वाले नेताओं को हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में लागू करता है, जो आज परमेश्वर के लोगों के बीच नेता हैं। फरीसी कौन थे? खैर, यह शब्द कहां से आया है, इस पर कुछ बहसें हैं। संभवतः इस शब्द का अर्थ अलगाववादी है। वे उन लोगों के साथ भोजन नहीं करते थे जो पहले अपना भोजन दशमांश नहीं देते थे। वे टोरा की सटीक व्याख्याओं के लिए जाने जाते थे। कुछ शताब्दियों पहले एक बार उनके पास सैलोम अलेक्जेंड्रा के अधीन राजनीतिक शक्ति थी, लेकिन अब राजनीतिक शक्ति वाले लोग हेरोदियन और विशेष रूप से सदूकी थे। सदूकी पुरोहित अभिजात वर्ग के अधिकांश सदस्य सदूकी से संबंधित हैं। सदूकियों का हेरोदेस महान के साथ अच्छा संबंध रहा है, इसलिए संभवतः इस अवधि में अधिकांश महासभा में सदूकियां शामिल थीं। फरीसी संभवतः वहां अल्पसंख्यक थे, हालांकि गमलियेल प्रथम जैसे कुछ अत्यधिक प्रभावशाली लोग भी थे। खैर, वास्तव में गमलियेल द फर्स्ट, मैं बस यह सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि वह व्यक्ति किस काल का था। फरीसी लोगों पर प्रभावशाली थे, निःसंदेह। कभी कभी लोग किसी भी कारण से जो भी सत्ता में होता है उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वे लोगों पर प्रभावशाली थे। अभिजात वर्ग में उनमें से कुछ थे, संभवतः पूरे यहूदिया और गलील में कुल मिलाकर लगभग 6,000 फरीसी थे, तो वे पूरी आबादी का 1% भी नहीं है, या शायद 1% के करीब भी नहीं है। जोसीफस वह है जो हमें 6,000 का आंकड़ा देता है, और वह कभी भी संख्या को कम आंकने वालों में से नहीं है। इसलिए वे प्रारंभिक यहूदी धर्म का केवल एक पहलू थे, वे प्रामाणिक यहूदी धर्म नहीं हैं। फरीसी जो करते हैं उसका मतलब यह नहीं है कि सभी यहूदी लोग यही करते हैं, लेकिन वे आम तौर पर लोगों के विचारों को प्रतिबिंबित करते थे। यही एक कारण है कि वे लोगों के बीच लोकप्रिय थे। वे सदूकियों के विरोधी थे, लेकिन उन्हें सदूकियों के साथ मिलकर काम करना पड़ा, और हम उन्हें कभी कभी सुसमाचारों में, कभी कभी यीशु के विरुद्ध सदूकियों के साथ मिलकर काम करते हुए देखते हैं। उन्हें सदूकियों के साथ मिलकर काम करना पड़ा क्योंकि सदूकियों को लोगों के साथ उनकी मदद की जरूरत थी, और फरीसियों को सदूकियों की मदद की जरूरत तब पड़ती थी जब उन्हें राजनीतिक रूप से कुछ करने की जरूरत होती थी। यीशु नेताओं की आलोचना करते हैं, 23:1 और नेता जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह एक अलंकारिक चुनौती थी। यह उनके सम्मान के लिए चुनौती थी। मंदिर में मेजों को पलटना पुरोहित वर्ग के सम्मान के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि वे फिर यह सभी पुजारी नहीं हैं। पुरोहित अभिजात वर्ग ने वास्तव में निचले पुजारियों के दशमांश को जब्त कर लिया और उनमें से बहुत से को अगली पीढ़ी में पुरोहिती से बाहर कर दिया। हर कोई इस बात से सहमत था कि पुरोहित वर्ग भ्रष्ट था। फ्रीसी इससे सहमत थे। मृत सागर स्क्रॉल की रचना करने वाले लोग इससे सहमत थे। जोसेफस इससे सहमत था और सुसमाचार और अधिनियम के लेखक इससे सहमत थे। लेकिन किसी भी मामले में ये भ्रष्ट नेता, भले ही वे भ्रष्ट नहीं थे, यह सम्मान की बात थी। मेरा मतलब है, मंदिर में मेज पलटने से, मंदिर में इस व्यवधान से उनके सम्मान को चुनौती मिली। जिस तरह से यीशु ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की, उससे उनके सम्मान को चुनौती मिली। उन्हें लगा कि ये वे लोग हैं जिनका सबसे अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। और फरीसी भी, मेरा मतलब है, वे सदूकियों जितने ऊंचे पद पर नहीं थे, लेकिन वे भी इसे एक अलंकारिक चुनौती के रूप में देखेंगे। यीशु कहते हैं कि धार्मिक नेताओं को जो कुछ वे सिखाते हैं उसके अनुसार जीना चाहिए, पद 2 और 3। खैर, सिद्धांत रूप में फरीसी निश्चित रूप से इससे सहमत होंगे। वह कहता है, जो मूसा के आसन पर बैठते हैं वे जो कहते हैं सुनते हैं, परंतु जो करते हैं वह नहीं करते। कागज पर उनकी नैतिकता उस तरह से बेहतर थी जिस तरह से वे हमेशा उन्हें जीते थे। अब फरीसी नैतिकता में आपको दूसरों की तरह स्वयं के प्रति भी उतना ही उदार या सख्त होना चाहिए। लेकिन यीशु कहते हैं कि वे दूसरों पर ऐसा बोझ डालते हैं जिसे वे अपनी उंगली से भी नहीं उठा सकते। इसका क्या मतलब है कि वे मूसा की सीट पर बैठे थे? कुछ लोगों ने कहा है कि यह आराधनालय में, मंदिर में यह विशेष सीट है। वास्तव में कई विद्वानों ने ऐसा कहा है, क्योंकि पुरातत्वविदों ने दिखाया है कि कई आराधनालयों में सम्मान की यह विशेष सीट थी। समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि उस आसन को मूसा का आसन कहा जाता था। हम जो जानते हैं वह यह है कि किसी की सीट पर बैठना अक्सर किसी के उत्तराधिकारी होने की अभिव्यक्ति होती है। तो यीशु उन फरीसियों के बारे में बात कर रहे हैं जो मूसा की सीट पर बैठे हैं, जो मूसा के उत्तराधिकारियों की भूमिका का दावा करते हैं। वे कानून के सूक्ष्म व्याख्याकार होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी परंपराएं मूसा से मौखिक रूप से प्राप्त हुईं, हालांकि यह सच नहीं था, लेकिन उन्होंने यही कहा था। लेकिन उनके कई नैतिक सिद्धांत सही थे। और यीशु कहते हैं कि तुम उनके अनुसार जी सकते हो, लेकिन उनके उदाहरण के अनुसार मत जियो। श्लोक 5 में धार्मिक नेताओं को सम्मान के चिन्ह नहीं मांगने चाहिए। खैर, जब यूनानी वक्ताओं ने अलंकार का वर्गीकरण किया तो एक प्रकार का भाषण महामारी संबंधी अलंकार था, और इसमें प्रशंसा और निंदा शामिल थी। यहां यीशु दोष पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्राचीन दुनिया में आत्म प्रशंसा अपमानजनक थी। आपको इसके लिए विशेष बहाने बनाने होंगे। लेकिन ऐसे तरीके थे जिनसे लोग वास्तव में यह कहे बिना कि मैं सबसे अच्छा हूं, खुद को अच्छा दिखा सकते हैं। दार्शनिक एक विशेष प्रकार के परिधान पहनते थे जो उनकी पहचान बनाते थे। जाहिर है फरीसियों ने भी कुछ ऐसा ही किया। यीशु उनके बारे में बहुत ही विशिष्ट तावीज बनाने की बात करते हैं। फिलैक्ट्रीज, यह एक ग्रीक शब्द है। भरना हिब्रू शब्द है। व्यवस्था विवरण 6 में कहा गया है कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने माथे और अपने हाथ पर लिखना होगा। हो सकता है कि इसका अर्थ आलंकारिक रूप से हो, लेकिन इस अवधि से बहुत पहले कई यहूदी लोगों ने इसका शाब्दिक अभ्यास करना शुरू कर दिया था, कुछ आज्ञाओं को एक बक्से में रखकर जिसे वे सिर और हाथ पर रखते थे, और वे चौखट पर मेजुजा भी लगाएंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह आपको तोरा रखने की याद दिलाने का एक तरीका है। लेकिन समस्या यह थी कि वे इसे स्पष्ट तरीके से इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे थे कि वे अन्य लोगों को दिखाने के लिए कितने पवित्र हैं। यीशु उनके बाहरी लबादे के चारों कोनों पर झालरों को विशिष्ट बनाने की भी बात करते हैं, जहां उन्हें जित-जित लटकन कहा जाता है। वे चाहते थे कि हर कोई यह देखे कि वे संख्याओं की पुस्तक से इस आज्ञा का कितनी धार्मिकता से पालन कर रहे हैं। धार्मिक नेताओं को सम्मानजनक व्यवहार की तलाश नहीं करनी चाहिए। श्लोक 6। प्राचीन काल में बैठने पर बड़ा जोर था। बुजुर्गों को बेहतरीन सीटें मिलेंगी। कुछ आराधनालयों में एक ऊंचा मंच, एक बीमा होता था, और रुतबे वाले अधिक महत्वपूर्ण लोग वहां बैठते थे। सभास्थलों में जहां लोग फर्श पर बैठते थे, उनमें से बहुतों के पास बेंचें थीं, लेकिन सभास्थलों में जहां लोग फर्श पर बैठते थे, उच्च स्तर के लोगों को वह बैठने की जगह मिलती थी जो फर्श पर नहीं होती थी। यूनानी मंडलियों में, भोजों में, लोगों को अक्सर रैंक के अनुसार बैठाया जाता था। मृत सागर स्क्रॉल में लोगों को निश्चित रूप से रैंक के अनुसार बैठाया जाता था, और यदि आप अपनी रैंक से बाहर निकलते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। रैंक के हिसाब से बैठना बहुत परिचित, बहुत आम बात थी। खैर, अपने लिए सर्वोत्तम सीटों की तलाश न करें। मैं सोचता हूं कि आज हमारे चर्चों में कभी कभी हम मंत्रियों को मंच पर कैसे बिठाते हैं। खैर, अगर मंत्री कुछ कर रहे हैं और वहां पहुंचना आसान है जहां हर कोई आपको देख सके, तो यह एक भूमिका निभाता है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं ताकि हर कोई हमारा सम्मान करे, तो यह हमारे दिलों के बारे में क्या कहता है? अब कभी कभी आप ऐसी चर्च सेटिंग में होते हैं जहां लोगों को चर्च के नेताओं पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और इसलिए इसका एक कारण है। लेकिन अगर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फूलना चाहते हैं, तो यह सही नहीं है। यीशु श्लोक 7-11 में यह भी बताते हैं कि धार्मिक नेताओं को अपने लिए मानद उपाधियों की तलाश नहीं करनी चाहिए। संतों ने विनम्रता पर जोर दिया, लेकिन उनका यह भी मानना था कि उन्हें विशेष सम्मान मिलना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि जो लोग सड़क से गुजर रहे थे, उन्हें पहले उनका अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि टोरा के संतों के रूप में उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता थी। उनके साथ सामाजिक वरिष्ठों जैसा व्यवहार किए जाने की आवश्यकता थी। यही रिवाज था। आधिकारिक उपाधि बनने से पहले रब्बी का शाब्दिक अर्थ मेरा स्वामी होता था, रब्बी अमुक। इसका मूल अर्थ मेरा गुरु था, जो किसी के शिक्षक को दी जाने वाली एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि थी। यीशु कहते हैं, किसी को रब्बी मत कहो। आपका एक ही स्वामी है, यहां तक कि मसीह भी। जीसस कहते हैं, किसी को पिता मत कहो। वह आपके पिता के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह उन विशेष मानद उपाधियों के बारे में बात कर रहा है जो रब्बियों को दी जाती थीं। रब्बियों के शिष्य अपने रब्बियों को पिता कहकर पुकारते थे। अब मुझे पता है कि आज कुछ चर्च परंपराओं में हम किसी को उपाधि के रूप में पिता कहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम किसी को प्रोफेसर या पादरी कहते हैं। हमारे पास कभी कभी कुछ अलग अलग व्यवसायों के लिए उपाधियां होती हैं। लेकिन इस मामले में मुद्दा यह था कि यह सम्मान की उपाधि थी जिसका उन्हें आदर दिया जा रहा था, कि उनके शिष्यों को उनके साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करना था जैसा वे अपने माता पिता के साथ करते थे। यीशु कहते हैं कि आपका एक ही शिक्षक है, यीशु भी। आपके एक पिता हैं, भगवान भी। आप सभी भाई बहन हैं। यह शिक्षक की भूमिका को समाप्त नहीं कर रहा है। उस राज्य के मुंशी को याद करें जिसके बारे में हमने मैथ्यू 13 में बात की थी। पॉल शिक्षकों को आत्मा का उपहार बताते हैं। हम उन चीजों का स्वागत करते हैं। बाइबल कहती है, जिनका आदर करना उचित है उनका आदर करो, सरकारी अधिकारियों इत्यादि का। पॉल कहते हैं, मंडली का नेतृत्व करने वाले बुजुर्गों का सम्मान करें। यह सब सच हो सकता है, लेकिन हम जो नेता हैं उन्हें यह याद रखना होगा कि हमारा आह्वान सेवक बनना है। हमें दूसरों को अपना सम्मान करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, हमें इसकी तलाश नहीं करनी चाहिए। जब मैं पादरी था तब एक मंडली में मैं बहुत छोटा था और बाकी लोग भी युवा थे और वे मुझे क्रेग कहकर बुलाते थे। कुछ हलकों में यह आपत्तिजनक होगा। बाद में मैं कुछ अन्य मंडलियों में था और मैं चाहता था कि लोग मुझे क्रेग कहें और उन्होंने कहा, अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आदरणीय कीनर, मैं ऐसा कह रहा था, कृपया मुझे आदरणीय न कहें। मेरा आदर नहीं किया जाना चाहिए, केवल ईश्वर का ही आदर करना चाहिए। आखिरकार मैंने हार मान ली, मैं उन्हें मना नहीं सका। मेरे छात्र शुरू से ही मुझे हमेशा डॉक्टर कीनर कहकर बुलाते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं उपाधियों की तलाश नहीं करना चाहता, मैं सम्मान की तलाश नहीं करना चाहता। अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। अगर लोग मेरा सम्मान करते हैं तो यह ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए सम्मान नहीं चाह रहा हूं। मैं प्रभु के लिए सम्मान की तलाश कर रहा हूं। ऊंचा उठाना केवल ईश्वर का कार्य है, जैसा कि यीशु श्लोक 12 में स्पष्ट करते हैं। यीशु पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं यशाया 2 श्लोक 11 और 12, 5, 15 और 16, यहेजकेल 21:26 इत्यादि की भाषा को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वह नीचा किया जाएगा, परंतु जो नम्र है वह ऊंचा किया जाएगा। यहां तक कि एक भोज सेटिंग में जहां आप सबसे निचली सीट चुनते हैं और आपको ऊपर बुलाया जाता है, वह नीति वचन से है। इस प्रकार नेताओं को सेवक होना चाहिए। राज्य में नेतृत्व इसी तरह काम करता है। यदि ईश्वर ने हमें कोई भूमिका दी है तो वह अपने लोगों की सेवा करना है, उन पर शासन करना नहीं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम इसे 24:45-51 में बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे। लोग भेड़ों का शोषण अपने लिए करते हैं, चाहे अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के लिए या अक्सर आर्थिक रूप से उनका शोषण करते हैं। कभी कभी मंत्रियों ने मंडली के सदस्यों का यौन शोषण भी किया है। मनोवैज्ञानिक स्थानांतरण नामक एक चीज के बारे में बात करते हैं, जहां कोई व्यक्ति सम्मान की स्थिति में होता है और लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। बात केवल व्यक्ति की नहीं है, वे उसकी भूमिका या उसकी स्थिति को देख रहे हैं कि वे उस व्यक्ति को कैसे समझते हैं। फिर प्रतिस्थानांतरण होता है, जहां यह व्यक्ति स्नेह लौटाना शुरू कर देता है। आपको सावधान रहना होगा। उचित सम्मान और अनुचित तथा उचित स्नेह और अनुचित स्नेह के बीच अंतर है। कई मंत्री पाप में गिर गए हैं और हमें इस बारे में दृढ़ रहने की जरूरत है कि हमें लोगों को उस पर काबू पाने और भगवान के सामने पवित्र जीवन जीने में मदद करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान उन लोगों का न्याय करेंगे जो उनके सेवकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम सभी साथी सेवक हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यीशु 23:13-32 में मानव धर्म के विरुद्ध दुहक व्यक्त करते हैं। फरीसियों की नैतिकता यीशु की नैतिकता के समान थी, लेकिन फिर सिद्धांत रूप में यह सिर्फ आपकी नैतिकता नहीं है। यह सिर्फ यह नहीं कह रहा है, ओह, मैं यीशु द्वारा कही गई हर बात से सहमत हूं। हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे हम यीशु द्वारा कही गई हर बात से सहमत हों। यीशु यहाँ 7 दोहक देते हैं जो 8 धन्यताओं से मेल खाते हैं। जाहिरा तौर पर कुछ शास्त्रियों ने सोचा कि मैथ्यू में यीशु के पहले उपदेश में 8 धन्यताओं से मेल खाने के लिए यहाँ 8 संकट होने चाहिए थे। हालांकि 8वां एक पाठ्य संस्करण प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे कुछ बाद के शास्त्रियों ने मार्क से उधार लिया था, जिन्होंने सोचा कि इसे यूं ही छोड़ दिया गया था। कुछ धार्मिक नेता लाभ की अपेक्षा हानि अधिक करते हैं, श्लोक 13-15। यीशु मतांतरण करने वालों की खोज की बात करते हैं, जिसे व्यापक रूप से प्रमाणित किया गया था। रोमन इतिहासकार टैसिटस इसकी शिकायत करते हैं। कुछ रोमन बहुत खुश नहीं थे। यहूदी लोग धर्मांतरण कराने वालों की तलाश कर रहे थे, लेकिन यह कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया काम था। यह एक संगठित मिशन आंदोलन की तरह नहीं था। यहूदी समुदाय के पास कोई संगठित मिशन आंदोलन नहीं था, लेकिन लोगों को धर्मांतरण कराने, गैर यहूदी धर्मांतरण कराने में रुचि थी। ऐसा नहीं है कि यह कोई बुरी बात होगी। समस्या यह थी कि वे धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे और वे अपने जैसे मूल्यों के साथ धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे और उनके मूल्य हमेशा सही मूल्य नहीं थे। उनके पास सही दिल नहीं था। इसलिए वे किसी ऐसी चीज के लिए धर्मांतरण कर रहे थे जो सही नहीं था। यीशु कहते हैं, आप दोगुने नरक की संतान हैं, जो यह कहने का एक अच्छा सिमेटिक तरीका था कि आप जितने नरक के लिए बाध्य हैं उससे दोगुने आप हैं। पवित्रता के मानकों के मूल्यांकन में असंगतता आगे चलकर भगवान का अपमान करती है, श्लोक 16-22 तक। यह उस बात की याद दिलाता है जो यीशु ने मैथ्यू अध्याय 5 में श्लोक 33 और उसके बाद की शब्दों के बारे में पहले ही कहा था। 23:16-22 तक, अगर लोग गलती से शपथ तोड़ देते हैं तो फैसले से बचने के लिए सरोगेट नामों का उपयोग करते हैं। फरीसियों ने यह भेद करने की कोशिश की कि कौन से शपथ वाक्यांश वास्तव में बाध्यकारी थे। यीशु ने इस अभ्यास को निरर्थक कासुएस्ट्री, अर्थहीन खींचतान और वास्तव में कानून के मर्म को न समझने के रूप में खारिज कर दिया। किसी भी प्रकार की शपथ आप अपना सम्मान दांव पर लगा रहे हैं और किसी भी प्रकार की शपथ अंततः भगवान का आह्वान करती है। वह मंदिर में सोने की कसम खाने की बात करता है। यदि तुम मंदिर में सोने की शपथ खाते हो तो यह तुम्हें दोषी ठहराता है, उन्होंने यही कहा। यीशु ने कहा कि तुम जानते हो, तुम जो भी शपथ खा रहे हो वह वही है। लेकिन उन्होंने मंदिर के सोने को बहुत महत्व दिया, जिसमें वह सुनहरी लता भी शामिल थी जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। यीशु ने कहा कि शास्त्री और फरीसी पेड़ों के लिए जंगल खो रहे थे। वे विवरणों पर इतने अधिक केंद्रित थे कि वे परमेश्वर के संदेश की बड़ी तस्वीर से चूक गए। और हम आज ऐसा कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आप कभी कभी, यहां तक कि मदरसा में भी, कभी कभी मदरसा के छात्रों को पेड़ों के लिए जंगल की याद आती है। कभी कभी आप जानते हैं, ग्रीक व्याख्या सीखते समय आप कहते हैं, ठीक है, इस क्रिया का अर्थ यह है और यह इस संज्ञा का रूप है इत्यादि। खैर, यह सब बाइबल को समझने में सहायक हो सकता है, लेकिन केवल बाइबल का ज्ञान होने के कारण फरीसियों के पास बाइबल का ज्ञान था। वास्तव में वे टोरा के बारे में आज के अधिकांश ईसाइयों से बेहतर जानते थे। केवल व्याकरण का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, केवल पृष्ठ का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उसका आनंद लेना चाहिए, हमें उससे प्यार करना चाहिए। लेकिन किताब के प्रति जागरूक होने का मतलब सिर्फ किताब को जानने से कहीं अधिक होना चाहिए। इसका अर्थ यह होना चाहिए कि हम पुस्तक की भावना के अनुरूप जीवन जिएं। मैथ्यू 23 श्लोक 23 और उसके बाद इस बारे में बात करता है कि कैसे उन्होंने पेड़ों के लिए जंगल को खो दिया। यीशु दशमांश देने के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आजकल कई चर्च दशमांश देने पर बहुत जोर देते हैं। वे मलाकी 3:10 को उद्धृत करते हैं, सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन रहे। और वे कहेंगे, ठीक है, तुम्हें सारा दशमांश चर्च में लाना होगा, क्योंकि चर्च वह जगह है जहां लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। मलाकी में वास्तव में बात यह नहीं थी। भंडारगृह वह स्थान था जहां अनाज रखा जाता था। यह अन्न भंडार था और भोजन फिर पुजारियों और लेवियों को वितरित किया गया, न कि केवल आपके पसंदीदा स्थानीय चर्च को। अब मुझे पता है कि यह एक बहुत ही मार्मिक विषय हो सकता है, क्योंकि इसी तरह कई चर्च अपना समर्थन जुटाते हैं। जब जॉन टेटजेल रोम में निर्माण परियोजनाओं के लिए समर्थन जुटा रहे थे और मार्टिन लूथर में धर्म ग्रंथों के पाठन और परंपरा के पाठन, जिस पर वह आधारित था, को चुनौती देने का दुस्साहस था, जिस तरह से यह किया जा रहा था, उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप इसे देते हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार को यातनागृह से बाहर निकाल लेंगे इत्यादि। लूथर ने कहा, इसका कोई आधार नहीं है, यह दुष्ट धन उगाही है। अपने दिन की स्थापना के साथ ही उसने खुद को बहुत परेशानी में डाल लिया, और अपने आप को बहुत अधिक परेशानी में न डालते हुए शायद मुझे अगले बिंदु पर जाना चाहिए, लेकिन केवल यह कहना कि चर्च के काम का समर्थन करना बाइबल है। यीशु शायद 10% की मांग नहीं करते, क्योंकि यीशु को 10% जैसे छोटे बलिदान से नहीं खरीदा जाएगा। यीशु सब कुछ मांगता है, वह हमारे जीवन की मांग करता है, तो यह वास्तव में 10% से अधिक है। लेकिन जहां तक यह जाता है, यह वहां जाता है जहां राज्य के लिए इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब टेलीविजन मंत्रालयों और इस तरह की चीजों के संदर्भ में, मैं आम तौर पर टेलीविजन मंत्रालय पर भरोसा करने की तुलना में स्थानीय चर्च पर अधिक भरोसा करूंगा, या इन वीडियो पर इन वक्ताओं को यह सब भेजूंगा जो आप देख रहे हैं। नहीं, स्थानीय चर्च को हमारे समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि स्थानीय चर्च को भी उचित तरीकों से धन का उपयोग करने की आवश्यकता है। दशमांश का उपयोग किस लिए किया जाता था? खैर, इसका उपयोग मंत्रालय के काम का समर्थन करने के लिए किया गया था। याजकों और लेवियों का उपयोग उन मंत्रियों का समर्थन करने के लिए किया जाता था जो परमेश्वर का कार्य कर रहे थे, जो मंदिर में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और हर तीसरे वर्ष इसका उपयोग यरूशलेम में एक पार्टी आयोजित करने और लेवियों, विधवाओं और अनाथों के साथ संसाधनों को साझा करने के लिए किया जाता था। हम में से अधिकांश लोग आज यरूशलेम में कोई पार्टी नहीं रखते। हम पुराने नियम के दशमांश के बारे में जो कुछ भी कहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ नहीं ले रहे हैं, लेकिन दशमांश पुराने नियम के भंडारीपन का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है। बाइबल का प्रबंधन दशमांश भेड़बकरियों के पहले बच्चों और अन्य भेंटों से कहीं अधिक है। तो आप जानते हैं, लोग इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि उनके मन में एक आकृति हो, इसलिए वे कम से कम ऐसा करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि बाइबल प्रबंधन का अर्थ है गरीबों की देखभाल करना, मंत्रालय के काम की देखभाल करना, राज्य की चीजों की देखभाल करना और अपने आसपास की जरूरतों की देखभाल करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी की तरह दिखने के लिए बाहर जाना और स्टेटस सिंबल खरीदना है। वैसे भी उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर धिक्कार है, यीशु कहते हैं, तुम अपने मसालों, पुदीना, सौंफ और जीरे का 10वां हिस्सा देते हो। वह इन मसालों को क्यों निर्दिष्ट करता है? खैर, दशमांश कृषि उपज का 10वां हिस्सा था। फरीसी इसके बारे में बहुत सावधानी बरतते थे, हालांकि उन्होंने अलग अलग मार्गों में सामंजस्य स्थापित किया और 3 दशमांश लेकर आए, इसलिए 2 साल के लिए 20% और तीसरे के लिए 30% ताकि वे यरूशलेम में अपनी पार्टी का आयोजन कर सकें। तो अंत में उनका औसत लगभग 23 था और प्रति वर्ष उनकी आय का 1/3% दशमांश में खर्च होता था। फरीसी मुख्य रूप से शहरी थे और दशमांश का प्रभाव मुख्य रूप से ग्रामीण कृषकों पर पड़ता था। लेकिन फरीसी इस बारे में पाखंडी नहीं थे। यदि वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं होते कि उस पर पहले ही एक बार दशमांश लगाया जा चुका है, तो वे खरीदे गए किसी भी भोजन पर दोबारा दशमांश लगाते थे। लेकिन उनके मसालों का 10वां हिस्सा वह किस बारे में है? फरीसियों ने इस बात पर बहस की कि क्या कुछ चीजें वास्तव में खाद्य पदार्थ थीं और इसलिए क्या उन्हें दशमांश देने की आवश्यकता है या नहीं। बाद में रब्बियों ने कहा, हाँ, सोआ और जीरे का दशमांश दें, लेकिन आपको पुदीने का दशमांश देने की आवश्यकता नहीं है। पहली सदी के शम्माई लोग, जो संभवतः 70 से पहले प्रभुत्वशाली थे, पहली सदी के शम्माई लोगों ने जीरे पर भी विवाद किया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें उस पर दशमांश देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ यीशु एक अत्यंत ईमानदार फरीसी को संबोधित कर रहे हैं। तू अपने मसालों अर्थात पुदीना, सुआ और जीरे का 10वां भाग देना। यह अतिशयोक्तिपूर्ण फरीसी है। वह हर चीज पर दशमांश देता है, यहाँ तक कि उन चीजों पर भी जो विवादित हैं, चाहे आपको उन पर दशमांश देना पड़े या नहीं, वह उन पर दशमांश देता है। और फिर भी यह अत्यंत ईमानदार फरीसी बात से चूक जाता है। यह बहुत अच्छा है, यीशु कहते हैं, यह बहुत अच्छा है कि तुम ऐसा करते हो, परंतु यद्यपि तुम दशमांश देते हो तो भी तुमने व्यवस्था की अधिक महत्वपूर्ण बातों अर्थात न्याय, दया और सच्चाई की उपेक्षा की है। अब याद रखें कि यीशु ने व्यवस्था के किसी भी मामले को हल्का नहीं समझा था। जो कोई भी सबसे छोटी आज्ञा को तोड़ता है, 519, लेकिन उसने कानून के मर्म की तलाश की। और कानून के मर्म की तलाश करने और उसे एक व्याख्यात्मक केंद्र के रूप में उपयोग करने का यह विचार नया नहीं था। व्यवस्था विवरण 10 श्लोक 12 और 13 के बारे में सोचो। और अब हे इसराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करे अपने सारे मन और सारे प्राण से, और यहोवा की जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको तेरे भले के लिथे मानना। एक तरह से कानून का सारांश। मीका अध्याय 6 और श्लोक 8, उसने तुम्हें दिखाया है, हे मनुष्य, क्या अच्छा है, और भगवान को आपसे क्या चाहिए? न्यायपूर्वक कार्य करना, दया से प्रेम करना, अपने परमेश्वर के साथ नम्रतापूर्वक चलना, न्याय और दया और विश्वासयोग्यता, यीशु कहते हैं। अब यीशु और रब्बी दोनों सहमत थे कि टोरा का कोई भी मामला हल्का नहीं था। ऐसा नहीं था, ठीक है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यीशु ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ चीजें कुछ अन्य चीजों की तुलना में अधिक वजनदार थीं। पहली और सबसे बड़ी आज्ञा याद रखें। और फरीसी इस बात पर बहस कर रहे थे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। खैर, यीशु ने कहा, अपने पूरे दिल से भगवान से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से खुद प्यार करो। यह सब मिलकर कानून का सारांश प्रस्तुत करते हैं। हे अंध मूर्खों, कौन बड़ा है? हे अंधो, कौन बड़ा है? वह उनसे 23:17-19 में पूछता है। इसलिए कुछ चीजें दूसरों की तुलना में अधिक केंद्रीय हैं। मेरा मतलब है, कानून देने में सबसे केंद्रीय चीजों में से एक भगवान का हृदय है, क्योंकि भगवान कानून को प्रकट कर रहे हैं। भगवान, भगवान दयालु और दयालु भगवान, जो तीसरी और चौथी पीढ़ी के बच्चों पर माता पिता के अधर्म का दंड देते हैं, लेकिन उनका हेसेड, उनका वाचा प्रेम उन हजारवीं पीढ़ी के लिए है जो उनसे डरते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ईश्वर का हृदय कानून के केंद्र में है। देखते हुए जैसा कि वह पुराने नियम में कहता है, इज़राइल, मैं तुम्हें ये कानून तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ। हम मैथ्यू के सुसमाचार में कहीं और न्याय, दया और विश्वासयोग्यता पर जोर देते हुए देखते हैं। सेंचुरियन के विश्वास की सराहना करते हुए दया मांगने पर यीशु द्वारा दया दिखाना, यीशु द्वारा न्याय के लिए बोलना। यीशु के समकालीनों ने भी माना कि कानून में कुछ कथन दूसरों की तुलना में अधिक केंद्रीय थे। उन्होंने उन्हें दूसरों से ज्यादा वजनदार बताया। कभी कभी उन्होंने मानव शब्द को ईश्वरीय आज्ञाओं और हल्के और वजनदार आज्ञाओं से अलग किया, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे ठीक उसी तरह नहीं किया जिस तरह से यीशु ने किया होगा। उदाहरण के लिए रब्बी ने कहा कि प्रार्थना शॉल के सफेद धागों की उपेक्षा करने की सजा प्रार्थना शॉल के नीले धागों की उपेक्षा करने की सजा से अधिक थी। संभवतः यह उस तरह की बात नहीं थी जैसी यीशु के मन में थी। यह निश्चित रूप से उस तरह की बात नहीं है जिसके बारे में वह केंद्रीय बात को ध्यान में रखकर बात करते हैं। खैर, फिर यीशु फिर से हास्य का उपयोग करते हैं। वह जानता था कि अपने दर्शकों का ध्यान कैसे खींचना है। वह एक विनोदी ग्राफिक अपमान का उपयोग करता है। हे अंध मार्गदर्शकों, हम पहले ही देख चुके हैं कि यह एक सुंदर ग्राफिक कथन है। तू मच्छर को तो छान डालता है, परंतु ऊंट को निगल जाता है। अंग्रेजी में वास्तव में हमें एक अभिव्यक्ति मिली कि कोई व्यक्ति मच्छर पर जोर डाल रहा है और इसे मच्छर को छानकर बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन किंग जेम्स बाइबल के मूल संस्करण में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि, एक टाइपसेटिंग त्रुटि थी, और इसलिए लोगों ने यह कहने के बजाय कि मच्छर को छानो, यह कहा कि मच्छर को छानो, और इसलिए लोग यह कभी कभी अंग्रेजी में भाषण का एक अलंकार बन गया। लेकिन मुद्दा यह है कि वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। ईश्वर के हृदय के बड़े सिद्धांतों की तुलना में दशमांश छोटा था, जो हमसे दशमांश से अधिक की मांग कर सकता है, या यदि कोई वास्तव में गरीब है और उसे खाने के लिए बस इतना ही गुजारा करना पड़ता है, तो शायद उसे प्राप्त करने की अधिक संभावना होनी चाहिए। वैसे भी मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग अपने लिए बहाने बना सकते हैं। लेकिन हम में से जिनके पास संसाधन हैं, उन्हें अब यह विचार करने की आवश्यकता है कि हम राज्य के लिए उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं। परंतु मच्छर को छानकर निकालने और ऊंट को निगलने से उसका क्या अभिप्राय है? अरामाइक में एक मजाकिया वाक्य हो सकता है, ऊंट और मच्छर की ध्वनि एक जैसी है, गमला बनाम कैलमा। और आप जानते हैं, भविष्यवक्ता अक्सर निर्णय सुनाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते थे। मीका अध्याय एक में वाक्यों की एक पूरी श्रृंखला है। आपके पास यिर्मयाह अध्याय एक में एक है। आप यिर्मयाह को क्या देखते हैं? मुझे बादाम के पेड़ की एक छड़ी दिखाई देती है। खैर, यह एक ऐसा शब्द था जो त्वरित निर्णय की भी बात कर सकता था। अमोस अध्याय आठ, आप क्या देखते हैं? अमोस, मुझे गर्मियों के फलों की एक टोकरी दिख रही है। खैर, गर्मी का फल, इसी शब्द का मतलब अंत भी हो सकता है। इसराइल का अंत आ रहा है। खैर, यहां शब्दों का खेल हो सकता है, लेकिन शब्दों के खेल के अलावा कुछ और भी है जो बिल्कुल स्पष्ट है। फरीसी कुछ प्रकार की अशुद्धता से दूर रहते थे। लेविटिकस अध्याय 11 में कहा गया है कि यदि आपके पेय में कोई कीड़ा मर जाता है या आपके पेय या किसी चीज में छिपकली मर जाती है तो आप पेय नहीं पी सकते। खैर, हम में से कई लोग इससे सहमत होंगे, यहां तक कि अन्य प्रकार के कारणों से भी। हम कम से कम कई संस्कृतियों में इसे अशुद्ध मानते हैं। हालांकि एक बार मुझे ऐसा करना पड़ा था जब मेरा मेजबान मुझे वह दे रहा था और उसकी संस्कृति में यह बहुत अपमानजनक था अगर मैं वह नहीं पीता जो उसने मुझे दिया था। और जब उसने उसमें तरल पदार्थ डाला तो उसने यह नहीं देखा कि गिलास में कुछ मरी हुई मक्खियां हैं। लेकिन वैसे भी अगर पेय में कुछ मर जाए तो आम तौर पर वे कुछ नहीं पीते। लेकिन फरीसी यह पता लगाना चाहते थे कि गिनने के लिए यह कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक मक्खी की गिनती होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि दाल से छोटी कोई भी चीज गिनती में नहीं आती। इसलिए यदि आपके पेय में एक मच्छर मर जाता है तो उसकी गिनती नहीं होती है। लेकिन यहां हमारे पास एक अतिशयोक्तिपूर्ण अति ईमानदार फरीसी है। यह फरीसी कहता है, ओह, एक मच्छर भी, मैं उसे छान लूंगा, उसे अपने पेय में मरने नहीं दूंगा ताकि मेरा पेय अभी भी स्वच्छ रहे, फिर भी कोशर रहे। लेकिन फिर यही फरीसी यहूदिया और गलील के आसपास के सबसे बड़े जानवर ऊंट को निगल जाता है। ऊंट लैव्य व्यवस्था 11, ऊंट अशुद्ध थे, इसलिए उन्होंने एक मच्छर को छान डाला जिस पर बहस चल रही थी कि उन्हें ऐसा करना था या नहीं, लेकिन वे एक ऊंट को पूरा निगल जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के हृदय को भूल जाते हैं। वे बड़ी तस्वीर को मिस करते हैं। खैर, यीशु जब वह अस्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं तो वह जाते हैं और इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, क्योंकि फरीसी अनुष्ठानिक शुद्धता के स्वामी थे। दशमांश और अनुष्ठान शुद्धता उनके दो बहुत बड़े मुद्दे थे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! आप कप और डिश के बाहरी हिस्से को साफ करें, अंदर से वे लालच और आत्मभोग से भरे हुए हैं। सबसे पहले कप के अंदर की सफाई करें। खैर, यीशु यहां एक बहस पर खेल रहे हैं जो इस अवधि में फरीसियों के बीच शम्मई के स्कूलों और हिलेल के स्कूल के बीच थी, जहां उन्होंने शाब्दिक कप के बारे में बात की थी। शाब्दिक कपों के संबंध में शम्मैट्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि आपने पहले बाहरी हिस्से को अंदर से साफ किया है या नहीं। हिलेलाइट्स ने कहा, पहले अंदर की सफाई करो। यीशु कहते हैं, हाँ, पहले भीतर की सफाई करो। लेकिन जिस कप के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर का कप आपका अपना कप है। अपने दिल के अंदर की सफाई करें। बाहर की सफाई करने से पहले अपने जीवन के अंदर की सफाई करें। फरीसी अनुष्ठानिक शुद्धता के स्वामी हैं और फिर भी यीशु उन्हें अशुद्ध कह रहे हैं। खैर, सबसे खराब प्रकार की अशुद्धता शव की अशुद्धता थी और यीशु उस पर भी उन्हें चुनौती देने वाले हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुती हुई कब्रों के समान हो। वे बाहर से सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर वे मरे हुए लोगों की हड्डियों और हर अशुद्ध चीज से भरे हुए हैं। इस प्रकार तुम बाहर से लोगों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से तुम पाखंड और दुष्टता से भरे हुए हो। मत्ती 23 श्लोक 27 और 28। अधिकांश प्रकार की अस्वच्छता के विपरीत किसी शव को छूने से व्यक्ति पूरे एक सप्ताह के लिए अशुद्ध हो जाता है। संख्याएं 19। वास्तव में फ्रीसी परंपरा में यह इस हद तक लागू होता था जैसे किसी की छाया किसी शव को छूती हो। इसीलिए यदि आपको ल्यूक अध्याय 10 में अच्छे सामरी का दृष्टांत याद है तो पुजारी और लेवी दूसरी तरफ से गुजरे थे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि उनकी परछाई भी लाश के संपर्क में आए, और वे यरूशलेम में अनुष्ठान कर्तव्य भी नहीं निभाने जा रहे हैं। वे जेरिको वापस जा रहे हैं जहां बहुत सारे अमीर पुजारी रहते थे। यहूदी लोगों ने फसह के तीर्थयात्रियों को चेतावनी देने के लिए वसंत ऋतु में कब्रों को सफेद कर दिया, तो वे जानते हैं, ठीक है, इसे छूने का जोखिम न उठाएं। तुम पर्व के लिए अशुद्ध हो सकते हो, लेकिन मैथ्यू भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक सौंदर्यीकरण एजेंट के रूप में एक अलग तरीके से सफेदी पर ध्यान केंद्रित करता है। यहेजकेल 13 इस दीवार के बारे में बताता है, यह वास्तव में खराब स्थिति में है, यह भ्रष्ट है, लेकिन आप इसे नहीं जानते क्योंकि यह सब सफेद हो चुका है। ऐसा लगता है कि यह ठीक है। यीशु कहते हैं कि तुम ऐसे ही हो। लोग यह सोचकर आपके करीब आएंगे कि आप बहुत पवित्र हैं और वे आपकी उपस्थिति में धार्मिक अशुद्धता का शिकार हो जाएंगे। तुम कितने अशुद्ध हो, अब यीशु उसे बात को और भी आगे ले जाते हैं। ओह, मरे हुए लोगों की हड्डियां। जबकि हम कब्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तुम व्यवस्था के शिक्षकों और फरीसियों, हे कपटी लोगों पर हाय। तुम भविष्यद्वक्ताओं के लिए कब्रें बनाते हो और धर्मियों की कब्रों को सजाते हो। और तुम कहते हो, ओह, यदि हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं का खून बहाने में उनकी सहायता न करते। तो आप सहमत हो, आप इन पूर्वजों के वंशज हैं। तुम्हें पता है, वे कह सकते थे, हम भविष्यवक्ताओं की संतान हैं। लेकिन देखिए उन्होंने किससे पहचान बनाई। हम उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने पैगंबरों को मार डाला। प्राचीन काल में लोग बच्चे होने के बारे में दो अलग अलग तरीकों से बात कर सकते थे। आप किसी के आनुवंशिक बच्चे हो सकते हैं या आप किसी के जैसे हो सकते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि आप किसी के बच्चे की तरह हैं। और इसलिए यीशु उस पर खेल रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने कहा था, आप उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार डाला। तो आगे बढ़े, अपने पूर्वजों का प्याला भरें। उन्होंने नबियों को मार डाला। अब तुम मुझे मारकर अपने कर्मों की पराकाष्ठा करने जा रहे हो। इसलिए वे उस फैसले को आमंत्रित करते हैं जो उनके लिए बचाकर रखा गया है। हे सांपों, हे करैतों के वंश, तुम नरक की सजा पाने से कैसे बचोगे? खैर, घाना के लिए, आप जानते हैं कि प्राचीन लोग अक्सर मानते थे कि वाइपर अपनी माँ के अंदर पैदा होते हैं और अपनी माँ के गर्भ में चबाते हैं। हमने इसके बारे में मैथ्यू अध्याय 3:7 में बात की थी। इसलिए वे यहां अपने पूर्वजों के वंशज बनना चाहते हैं। और यीशु कहते हैं कि आप मूल रूप से माता पिता के हत्यारे की तरह हैं। तुम उन लोगों के समान हो जिन्होंने अपने पूर्वजों को मार डाला। तुम उन लोगों के समान हो जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। इसलिए अपने पूर्वजों के कटोरे का माप पूरा करो। सदाचारी होने से दूर ये फरीसी माता पिता के हत्यारे थे, इब्राहिम के अच्छे बच्चे नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं, तुम्हारे पूर्वजों को मार डाला। अब तुम पुरखों का प्याला पूरा करोगे। मुझे मारकर इसे ऊपर तक भर दो। और इसलिए उनके समय से लेकर इस समय तक जो भी निर्णय बचाए गए हैं, वे अब शीर्ष तक भरने जा रहे हैं। यह ओवरफ्लो होने वाला है। प्याला अंतः निर्णय के लिए तैयार हो जाएगा। धर्मी हाबिल से लेकर बेरेक्याह के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में घात किया था, वह सब धर्मी खून जो प्रियवी पर बहाया गया है, तुझ पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, यह सारा न्याय इसी पीढ़ी पर आएगा। उस पीढ़ी पर क्यों? क्योंकि वह पीढ़ी थी जो इसराइल के परम पैगंबर की हत्या करके, स्वयं मसीहा की हत्या करके पैगंबरों की हत्या के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली थी। हाबिल से लेकर जकर्याह तक सभी धर्मियों का खून। आपको उत्पत्ति अध्याय 4 से हाबिल का खून याद है। वह अपने हत्यारे के विरुद्ध भूमि से चिल्ला उठा। यही कारण है कि तुम इब्रानियों अध्याय 11 में पढ़ते हो कि वह मरकर भी बोलता है, क्योंकि उसका लोहू भूमि पर से चिल्ला रहा है। इब्रानियों अध्याय 12 में यीशु का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें बताता है। लेकिन इस संदर्भ में यीशु का खून भी न्याय की गुहार लगा रहा होगा। यह इन कर्मों की पराकाष्ठा करने वाला है। हिब्रू बाइबल में अंतिम शहीद, या कम से कम जिस तरह से हम अक्सर हिब्रू बाइबल के बारे में सोचते हैं, उसके पास वास्तव में उस समय एक भी स्क्रॉल नहीं था जहां आप पूरी हिब्रू बाइबल को फिट कर सकें। लेकिन हम कम से कम यह तो कह सकते हैं कि यह आखिरी बाइबलों में से एक है, जिस तरह से हिब्रू बाइबल को आम तौर पर व्यवस्थित किया जाता था, जिसे हम दूसरा इतिहास 24 कहते हैं। उसमें जकरयाह को मंदिर में शहीद कर दिया गया। उसने कहा, हे भगवान, बदला ले। अब बेरेक्याह का पुत्र जकरयाह दो जकरयाहों को एक साथ मिलाता हुआ प्रतीत होता है। यहूदी शिक्षक कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए चीजों को एक साथ मिला देते हैं कि आपका संकेत दूसरे की ओर भी है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मैं उस पर सभी विवरणों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही कुछ हद तक इसके बारे में बात कर चुका हूं। लेकिन बस यह कहने के लिए, ठीक है, यह जकरयाह है जिसकी मंदिर और वेदी के बीच हत्या कर दी गई है। दूसरा इतिहास 24 में वह प्रतिशोध के लिए चिल्लाता है। यहूदी परंपरा में, जो उसे अलग अलग जकरयाह के साथ भी जोड़ता है, लेकिन यहूदी परंपरा में यह कहा गया कि जहां जकरयाह की हत्या की गई थी, वहां से खून का एक फव्वारा निकल रहा था, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता रहा। आखिरकार जब बेबीलोन का कप्तान निबजारदान लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहा था, उसने मंदिर में खून का यह फव्वारा देखा और उसने कहा, यह ऐसा क्यों कर रहा है, इसे रोक। और कोई भी इसे रोक नहीं सका, इसलिए उसने मंदिर में पुजारियों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। और मेरा मानना है कि रब्बियों ने कहा था कि यह 24,000 के बराबर था। रब्बी अतिशयोक्ति में माहिर थे, लेकिन उन्होंने मंदिर में कई पुजारियों की हत्या कर दी, और अंततः लोग अब और नहीं सह सकते थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर, जकरयाह के खून के लिए हमें क्षमा कर। और फिर फव्वारा बंद हो गया। तो बहुत ही ग्राफिक तरीके से लोगों को यह भी याद आया कि जकरयाह का खून प्रतिशोध के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन यीशु कहते हैं कि पहले शहीद से लेकर आखिरी शहीद तक बहाए गए सभी धर्मी रक्त की आवश्यकता इस पीढ़ी को होगी, क्योंकि यह पीढ़ी ईश्वर के अपने पुत्र की हत्या करके उन सभी कार्यों की पराकाष्ठा करेगी। खैर, इस पीढ़ी से उनका क्या मतलब है? मैथ्यू के सुसमाचार में हर जगह इसका मतलब उस समय की पीढ़ी थी। अध्याय 27, उसका खून हम पर और हमारे बच्चों पर हो। सन 70 में तबाही आई। यीशु यरूशलेम पर विलाप करते हैं, और यहां भगवान का प्रेम, इज़राइल के लिए उनका विशेष प्रेम, उनके लोगों के लिए विशेष प्रेम बाकी प्रवचन को संदर्भ में रखता है। हां, वह उन नेताओं से नाराज है जो उसके लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं, जो भगवान के हृदय के बजाय अपने स्वयं के विचारों को सिखा रहे हैं। वह उनसे नाराज है, लेकिन इसलिए नहीं कि वह प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह प्यार करता है। और वह कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैंने तुमको इकट्ठा करना चाहा। मैं तुम्हें इकट्ठा करने के लिए कितना उत्सुक था। ठीक है, आपको याद होगा कि पुराने नियम में अक्सर ईश्वर द्वारा अपने लोगों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करने या अपने लोगों को अपने पंखों के नीचे आश्रय देने की बात कही गई है। वास्तव में यहूदी लोग शकीना के पंखों के नीचे आने, ईश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करना जारी रखते हैं, मतांतरण करने वालों या धर्मांतरित लोगों के बारे में बात करना जारी रखते हैं, जैसे कि उन्हें शकीना के पंखों के नीचे लाया जाता है। यीशु यहां दिव्य होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हें उसी प्रेम से प्यार करता हूं जो भगवान ने हमेशा अपने लोगों के लिए किया है। भगवान लोगों से प्यार करता है। ईजेकील का कहना है कि वह दुष्टों की मौत की इच्छा नहीं रखता, कि वे मरें, लेकिन लोगों को उसके प्यार का जवाब देना होगा। वह कहता है, धन्य है तुम मुझे तब तक फिर न देखोगे जब तक तुम न कहोगे धन्य वह है जो प्रभु के नाम से आता है। खैर, उन्होंने कहा कि जब वह यरूशलेम में आए तो उन्होंने उसका स्वागत किया। और यह कहता है कि जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर न देखोगे। यह कहावत ल्यूक में भी आती है, लेकिन ल्यूक में यह पहले दिखाई देती है। ल्यूक में यह प्रकट होता है, मैं अध्याय 13 में विश्वास करता हूँ, यह विजय प्रवेश से पहले प्रकट होता है, मैं अध्याय 19 में विश्वास करता हूँ। लेकिन यहाँ मैथ्यू में इसे विजय प्रवेश के बाद रखा गया है, क्योंकि मैथ्यू मानता है कि भविष्य में एक समय आ रहा है जब अंततः यहूदी लोग यीशु को अपना मसीहा मानेंगे और कहेंगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, और उस समय वे उसे फिर देखेंगे। वह वापस जाएगा। यह इतिहास के सभी यहूदी लोगों की बात नहीं कर रहा है, लेकिन अंतिम पीढ़ी में कई यहूदी लोग मसीहा में विश्वास करने लगेंगे और बहुत से लोग फिरते रहे हैं। परंतु यह भी कहता है कि राज्य का शुभ समाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा। ईश्वर सभी लोगों से प्यार करता है, लेकिन वह उन लोगों के प्रति अपना प्यार कभी नहीं भूला है या कभी नहीं खोया है जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। भजन 118 फिर से, यह उद्धरण फसह के दौरान गाए जाने वाले हलाल से है। हमने यीशु के ऋषि होने के बारे में बहुत कुछ देखा है। यीशु एक पैगंबर भी हैं। और आपने मैथ्यू अध्याय 23 में भी उसकी भविष्य सूचक आवाज सुनी है। यीशु कहते हैं, यह सारा खून इस पीढ़ी पर पड़ेगा। और फिर वह कहता है, देख तेरा घर तेरे लिथे उजाड़ पड़ा है। अच्छा, उसका मतलब किस तरह के घर से था? संदर्भ तय करता है कि वह किस घर के बारे में और कब बात कर रहा है। यीशु श्लोक 37 में यरूशलेम पर विलाप करते हैं, इससे पहले कि वे श्लोक 38 में कहते हैं कि इसका घर उजाड़ हो गया है। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित छंदों में मंदिर के विनाश का वादा किया है, 24 श्लोक 1 और 2। यीशु मंदिर छोड़कर चले जा रहे थे, तभी उनके शिष्य उनके पास आए और इमारतों की ओर इशारा करके कह रहे थे, देखो ये इमारतें कितनी शानदार हैं। सचमुच यह पूरे रोमन जगत की सबसे शानदार इमारत थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी तुलना उससे की जा सके। इफिसियन आर्टेमिस का मंदिर प्राचीन दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक था, जेरूसलम मंदिर नहीं था। ऐसा केवल रोमन साम्राज्य में यहूदी विरोधी भावना के कारण था, क्योंकि यह इफिसियन आर्टेमिस के मंदिर से भी अधिक भव्य था। लेकिन यीशु ने चौंकाने वाले तरीके से जवाब दिया। यीशु ने कहा कि तुम ये सब चीजें देखते हो, मैं सही बोल रहा हूं, यहां एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं छोड़ा जाएगा, हर पत्थर नीचे फेंक दिया जाएगा। यह मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यह प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य मंदिर से बड़ा और समृद्ध था। यह सबसे पवित्र स्थल और दुनिया का सबसे पवित्र शहर था। कुछ यहूदी लोगों के लिए, उदाहरण के लिए अरिस्टियास के पत्र में, मंदिर को अजेय माना जाता था। 4 मैकाबीज डायस्पोरा से ग्रीक में लिखा गया एक और यहूदी काम शायद अलेक्जेंड्रिया से कहता है कि भगवान इस मंदिर की रक्षा करेंगे। यहूदी लोगों को उम्मीद थी कि भगवान इस मंदिर की रक्षा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले मंदिर के भविष्यवक्ता कह रहे थे कि भगवान इस मंदिर की रक्षा करेंगे। यीशु कहते हैं कि यह नष्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग थे जो ऐसा मानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। फिर शिष्यों ने दो प्रश्न पूछे। टेंपल माउंट को एक किले की तरह समझा जा सकता है, और यह यरूशलेम के अंदर था जिसमें दीवारें भी थीं। फिर शिष्यों ने दो प्रश्न पूछे, ये चीजें कब होंगी? और तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? व्याकरणिक दृष्टि से हमारे यहाँ दो प्रश्न हैं। मार्क में इसे इस सटीक तरीके से नहीं लिखा गया है। हो सकता है कि मार्क मंदिर के विनाश से पहले लिख रहा हो। मैथ्यू चाहता है कि यह स्पष्ट हो, संभवतः मंदिर के विनाश के बाद लिख रहा हूँ। मैथ्यू चाहता है कि शब्द स्पष्ट हो। पुराने नियम में भविष्यवक्ता कभी कभी घटना के प्रकार के अनुसार घटनाओं को एक साथ मिला देते थे। तो जोएल में पहले दो अध्यायों में आपके पास एक टिड्डे की महामारी है जो एक हमलावर सेना की तरह दिखती है। अध्याय तीन आपके पास एक सेना है, जाहिरा तौर पर अंत के समय, लेकिन दोनों में कुछ समान भाषा का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह टिड्डी प्लेग एक निकट निर्णय है जो एक प्रिज्म प्रदान करता है जिसके माध्यम से जोएल प्रभु के दिन के बारे में बात कर सकता है जो वह परमेश्वर के न्याय के दिन की बात करता है। इतिहास में परमेश्वर के न्याय के दिन थे, लेकिन उन्होंने न्याय के अंतिम दिन का पूर्वाभास दिया। शिष्यों ने दो प्रश्न पूछे। पहला, ये चीजें कब होंगी? ठीक है, यीशु ने अभी कहा है, तुम ये सब बातें देखो, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये चीजें कब होंगी? मंदिर कब नष्ट होगा? उसे इसका जवाब देना होगा। वह एक अन्य प्रश्न का भी उत्तर दे रहा है, आपके आने का संकेत और युग के अंत का। मंदिर का विनाश वह घृणित कार्य जो पवित्र स्थान को उजाड़ देता है, जिसे वह 2415 में निर्दिष्ट करेगा। उस संदर्भ में वह पहाड़ों पर भागने आदि के बारे में बात करने जा रहा है। वह इन चीजों के एक पीढ़ी के भीतर पूरा होने के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। क्या मंदिर एक पीढ़ी में नष्ट हो गया? हाँ, यह था यीशु के ऐसा कहने के लगभग 40 साल बाद, जो बाइबल के कालक्रम में एक पीढ़ी की सामान्य लंबाई थी। अंत के लक्षण। सबसे पहले यीशु गैर संकेत देने जा रहा है, फिर वह देने जा रहा है जो वास्तव में अंत के लिए एक शर्त है। आपको ये चीजें दिखेंगी। अंत अभी नहीं हुआ, परंतु जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। लेकिन वह उन्हें संकेत नहीं कहते, और अंत में वह कहता है, और उसने मंदिर के विनाश आदि के बारे में बात की है, लेकिन अंततः वह कुछ कहता है जिसे वह एक संकेत कहता है। जब तुम मनुष्य के पुत्र का चिन्ह सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखो। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको बहुत देर होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो वह अंत के संकेत के साथ साथ गैर संकेत भी देता है और फिर वास्तविक संकेत देता है। तो मंदिर के विनाश के साथ ये चीजें एक पीढ़ी के भीतर पूरी हो जाएंगी। युग के अंत में यीशु के आने पर यीशु ने कहा, न कोई उस दिन को जानता है, न उस घड़ी को, न सूर्य को, न स्वर्ग के स्वर्गदूतों को, परंतु केवल पिता को जानता है। मंदिर का विध्वंस। यीशु कहते हैं, इस पीढ़ी में तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, जो मैथ्यू के सुसमाचार में हमेशा से जीवित रहने वाली पीढ़ी थी। यह अंतिम भावी पीढ़ी के बारे में बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह दोबारा हो सकता है। यदि मंदिर दोबारा बनाया गया तो यह फिर से उजाड़ हो सकता है। लेकिन यह कहना कि यीशु ने यहाँ विशेष रूप से जो भविष्यवाणी की थी वह उस पीढ़ी में पूरी हुई, जैसा उन्होंने कहा था। फिर वह मंदिर को अपवित्र करने की बात करता है जो इसे उजाड़ बनाता है। तो यह अपवित्र है और यह नष्ट हो गया है। मंदिर एक पीढ़ी में नष्ट हो गया, ठीक 40 साल, अगर हमारे पास वह तारीख सही है जब यीशु बोल रहे थे, शायद बिल्कुल, अगर बिल्कुल नहीं तो काफी करीब और उससे थोड़ा कम, लेकिन यीशु की भविष्यवाणी के लगभग 40 साल बाद। अब यह इस अर्थ में असामान्य नहीं था कि जब भी इसराइल ने पाप किया, परमेश्वर ने मंदिर को अपवित्र करने या नष्ट करने की अनुमति दी। यह बेबीलोनियों में हुआ था। यह 165 ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एंटियोकस एपिफेन्स के तहत हुआ था। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में एक रोमन जनरल पोम्पी ने इसे अपवित्र कर दिया था। इसे पहली शताब्दी ईस्वी में रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वर्ष 135 में हैड्रियन के तहत रोमनों द्वारा इसे और अधिक अपवित्र किया गया। और कुछ लोग अन्य लोगों के लिए भी तर्क देंगे। जब इज़राइल ने पाप किया तो मंदिर नष्ट हो गया, अपवित्र हो गया या दोनों। और यीशु की भविष्यवाणी निश्चित रूप से प्रामाणिक है। यह बहुप्रमाणित है। यह उन अन्य चीजों के साथ सुसंगत है जिनके बारे में यीशु ने बात की थी। यीशु ने मंदिर में न्याय का कार्य दिया, न केवल एक बर्तन को तोड़ना बल्कि मेजों को उलट देना। साथ ही उनके खिलाफ झूठी गवाही भी दी। खैर, कौन झूठी गवाही देने वाला था? लेकिन कुछ लोगों के पास झूठी गवाही थी कि उसने कहा था कि वह मंदिर को नष्ट कर देगा। और आपके पास जॉन में ऐसा कुछ है जहां यीशु ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन वह कहते हैं, तुमने मंदिर को नष्ट कर दिया, मैं इसे खड़ा करूंगा। लेकिन वह अपने शरीर के मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वहां लोग एक नए मंदिर की उम्मीद कर रहे थे। यहां तक कि कुछ लोग जिन्होंने पुराने के नष्ट होने की उम्मीद नहीं की थी, उन्होंने भी इसके रूपांतरित होने की उम्मीद की। इसके अलावा यह मार्क में है। यह एक पीढ़ी के भीतर है, शायद मंदिर के विनाश से पहले और मार्क से भी पहले की सामग्री, क्योंकि आपका घर छोड़ दिया गया है, आप उजाड़ हो गए हैं। यह मैथ्यू और ल्यूक के बीच साझा सामग्री में से कुछ है। शायद विद्वान अक्सर हम में से उन लोगों के लिए क्यों कहते हैं जो विश्वास करते हैं वह यहूदी ईसाई मंदिर में पूजा करते रहे। उन्होंने स्वयं ऐसी कोई कहावत नहीं बनाई होगी। और कुछ अन्य लोग भी थे जिनके पास यह पहचानने की अंतर्दृष्टि थी कि यह होने वाला है। जोशुआ बेन हननिया, जोसेफस के युद्ध में, पुस्तक 6, पैराग्राफ 300 और उसके बाद। हननिया का पुत्र यीशु यहोशू बेन हननिया कह रहा था, मंदिर पर हाय, यरूशलेम पर हाय। उसे इसके लिए मंदिर के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें चुनौती दी जाना पसंद नहीं था और न्याय की भविष्यवाणियों को यिर्मयाह के दिन या यीशु के दिन की तुलना में अधिक पसंद नहीं था। जोसेफस का कहना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, रोमन गवर्नर को सौंप दिया गया और तब तक पीटा गया जब तक उसकी हड्डियां दिखाई नहीं देने लगीं। लेवी का वसीयतनामा 15। पुजारी की अशुद्धता के कारण मंदिर नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा मूसा का वसीयतनामा 6, जो संभवतः पूर्वसाई है क्योंकि यह इस तक नहीं जाता है। इसमें कहा गया है कि मंदिर का केवल एक हिस्सा जलाया जाएगा, लेकिन यह मंदिर के एक हिस्से को जलाए जाने की बात करता है। और साथ ही कुछ सिबिलीन दैवज्ञ इस तरह की बात कर सकते हैं। फर्स्ट हनोक में एक नए मंदिर, कुमरान मंदिर स्क्रॉल और नियमित रूप से की जाने वाली प्रार्थना अमिदा में भी व्यापक उम्मीद थी। इसके अलावा मृत सागर स्क्रॉल में, हबक्कूक पेशर में, कित्तिम यरूशलेम पुजारी के धन को ले जाएगा। यह 70 से काफी पहले की बात है। वे मंदिर स्थापना पर फैसले की उम्मीद कर रहे थे। यहां थोड़ी अतिशयोक्ति है। यीशु कहते हैं, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर न छूटेगा। रिटेनिंग दीवार में कुछ पत्थर बचे हुए थे। तकनीकी रूप से यह मंदिर के नहीं थे, लेकिन चूंकि कुछ पत्थर बचे हुए थे, इसलिए इस तथ्य के बाद लोगों द्वारा बनाई गई कोई संभावना नहीं थी। यीशु यहां आग से विनाश के बारे में बात नहीं करते हैं, हालांकि वह मैथ्यू 22 में दृष्टांत में ऐसा करते हैं। और फिर कुछ विद्वान कहते हैं, ठीक है, यदि आप तथ्य के बाद इसे बना रहे थे तो आप शायद इस विवरण को शामिल करेंगे और नहीं वह विवरण। इसी प्रकार यीशु यहाँ पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन बाद में भी रब्बियों ने मंदिर के विनाश को फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया। यीशु उसमें अकेले नहीं थे, वह उन रब्बियों की तुलना में अधिक समय पर था जिन्होंने इस तथ्य के बाद इसे पहचाना। इस संदर्भ में यीशु कहते हैं कि जब तुम उस अपवित्रता को देखो जो विनाश की ओर ले जाएगी तो भाग जाओ। हाबिल और जकर्याह के खून की तरह मंदिर की सीढ़ियां, रक्तपात ने फैसले को आमंत्रित किया। और वर्ष 66 में जोसेफस हमें बताता है कि यहूदी देशभक्तों ने मंदिर में पुजारियों की हत्या कर दी। जोसेफस ने इसे उस घृणित कार्य के रूप में वर्णित किया है जो उजाड़ लाया। इस दौरान जोसेफस जीवित था, उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। जोसेफस सोचता है कि यही वह घृणित कार्य था जो उजाड़ लाया। 3.5 साल बाद उस घृणित कार्य के बाद मंदिर वास्तव में नष्ट हो गया था। खैर, हम उस दौरान भागने की यीशु की चेतावनियों के बारे में और अधिक देखने जा रहे हैं, और हम यह भी देखने जा रहे हैं कि यीशु ने न्याय के बारे में क्या कहा, न केवल अपने समय की धार्मिक स्थापना पर बल्कि वह अपने दोबारा आने के बारे में कैसे बात करता है। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह 17:16 है, मैथ्यू 23:24।